Ayet number 33. Auzu billahi mineşşeytanirracim. İnna Allah istafa Adem ve Nuhan ve ala İbrahim ve ala İmran alel alemin. Yakinen Allah ne çun liya. Dekhega Allah ke chunav ki baat hai. İstafa ka laf safiyun se hai. Suat faya. Safiya chuni hui aurat. Safai ka laf isi se hai. Kyunki jab hum safai karte hain to hum cheeze chun chun ke idhar se udhar kar rahe hote hain aur udhar se idhar kar rahe hote hain. चुनाव के लिए अरबी जुबान में दो तीन लफ्ज आते हैं. एक इज्तवा का लफ्ज है, यहाँ इस्तफा का लफ्ज है. बस फर्क ऐसे समझ लीजिए कि एक होता है लफ्ज चूज, इंग्लिश में लिखेंगे तो बात बहुत अच्छी तरह समझ आएगी. एक लिखिए टू चूज और एक लिखिए टू सिलेक्ट. क्या फर्क है दोनों का? देखिए सिलेक्शन क्या होता है कि बहुत सारे लोग थे कोशिश करने वाले, कोशिश उन्होंने पूरी की और उन सब में से किसी एक को सिलेक्ट किया उसकी क्वालिफिकेशन की बेस पे. इतनी बात क्लियर है? ठीक है. दूसरी चीज होती है टू चूज. बहुत सारी चीजें थी, आप गए मार्केट में, आपको 10 जोड़ों में से एक कपड़ा आपने चूज किया. यानी सिलेक्ट करने का लफ्ज चूज करने के लफ्ज से बड़ा है, ये मुराद है. इस दफा का मानी कहते मुंतखिब किया, चुन लिया, अल्लाह ने उनको चुन लिया. यानी आदम के अंदर कोई गुण था कि अल्लाह ने आदम को चुना, नूह को और आले इब्राहिम को और आले इमरान को, तमाम जहानों पर चुन लिया. यहाँ आप देखिए कि चुनाव की बात है. हम सब अपने ऊपर लेके सोचें. हम बहुत ज़्यादा दुनिया में इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं. कोई ये कहता है ना कि मेरे दिल में ये नहीं है तो झूठ बोलता है. लेकिन देखा जाए तो बच्चे में भी, बचपन से भी प्रोमिनेंट होने की और बड़ा होने की ख्वाहिश होती है. बच्चे भी आप देखिए कि कोई अच्छा काम करते हैं तो एकदम उनकी लुक्स होती हैं पेरेंट्स की तरफ कि हमें अप्रिशिएट करो. कोई अच्छा कपड़ा पहने तो एक दफ़ा सबको दिखा रहे होते हैं ना. तो दुनिया में अल्लाह चुनाव कैसे करता है? पहला सवाल ये कि आदम और नूह और सबको कैसे चुना. तो आप देखिए कि आदम का चुनाव क्या था. अल्लाह ताला ने उनको अपने हाथ से पैदा किया, ये एक बहुत खास बात थी जो बाकी लोगों के साथ नहीं थी. ठीक है. फिर दूसरी बात यह है कि फरिश्तों से सजदा करवाया, ये बात भी हम पीछे पढ़ चुके हैं. फिर इसी तरह आप देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी. फिर अल्लाह आदम अलस्माकुल्लाह, सारी चीज़ों का इल्म दे दिया. फिर कुल नदखुलू, दाखिल हो जाओ जन्नत में. आदम को और हवा को कहा कि जन्नत में चले जाओ. फिर कैसे चुना अल्लाह ने? फताबा अलैहि, फिर उनकी तौबा कबूल की जब उन्होंने रब्बना ज़लमना अन्फुसना का. फिर आदम का चुनाव और क्या था दुनिया में? कि उनको नबी बनाया. आदम पहले इंसान भी थे और पहले नबी थे. आगे चलते हैं हज़रत नूह पे. हज़रत नूह को कैसे चुना? फिर आप देखेंगे कि हम अपने चुनाव का भी मेयार देखेंगे कि कब कोई मिस वर्ल्ड बनती है और कब कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आते हैं. दुनिया के भी चुनाव है ना. किसी को दुनिया में चुनाव करता देखें तो विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं. आप देखेंगे इन सब के अंदर जो कॉमन थिंग है कि अल्लाह ने इन सब को अपने दीन की खिदमत के लिए चुन लिया. आज इस दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव किसी को अल्लाह के अपने दीन के काम करने की तौफीक देना. देखिए इस वक्त आप पढ़ने आए हैं, ये आप अपने लिए पढ़ रहे हैं. अल्लाह का शुक्र अदा करें अल्लाह ने मौका दिया. नमाज दिन ब दिन ठीक होगी, रोज़ा दिन ब दिन ठीक होगा, आपको एहसास पैदा होगा, मामला संवरते जाएंगे. आपके पास पूरी चॉइस मौजूद है कि आप इस कोर्स के बाद एक लफ्ज़ आगे ना सीखें. इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप इसमें कम अज़ कम सेल्फ सफिशेंट हो जाएंगे, आम जिंदगी के सवाल जवाब के हल जवाब. लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपको चुने, इस्तफा मुस्तफ़ा अल्लाह के नबी का भी नाम है, लकब है आपका कि चुने हुए, तो फिर उसके लिए इंसान को कुछ कुर्बानियों से गुजरना पड़ता है. ये है वो पीरियड के जो है लंबा, तवील है, लेकिन इसका एंड बड़ा खूबसूरत है. कल किसी से बात हो रही थी ऐसी मैसेज में, तो कोर्स बड़े शौक से कर रही हैं लेकिन बीच में हर्डल तो आती है ना. किसके नहीं आती, सबके आती हैं. और उसकी वजह से फिर इंसान थोड़ा सा अपना फोकस खो देता है. तो मैंने चार छः जुमलों में यही बात उनको भी लिखी. ये तो होगा, चुनना जाना कोई आसान काम नहीं होता. ये इल्म का रास्ता है, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी. वक्त की सबसे पहली कुर्बानी तो अन्ना की कुर्बानी है. ये कई लोग बर्दाश्त नहीं करते कि हम नीचे क्यों बैठे हैं और उस्ताद ऊपर क्यों बैठे हैं. हमें क्यों इंस्ट्रक्शंस दी जाती, हमसे ली क्यों नहीं जाती, हर बात हमारी क्यों मानी नहीं जाती, हमारी मनवाई की जाती. ये तो होगा. फिर ये चुनाव का पहला मरहला होता है कि पहले इंसान को अपना नफ्स काटना पड़ता है. तोड़ो अपने नफ्स को, अन्ना को तोड़ो, झुकना पड़ता है. फिर उसके बाद आप देखिए कि जब इंसान वक्त लगाता है, सेहत लगती है, माल लगता है, ख्वाहिशात लगेंगी। कई लोग ऐसे होते हैं क्लास में उनको वॉशरूम जाने की जरूरत होती है लेकिन बैठे रहते हैं दबके कि नहीं उठ के तो हमारा मिस होगा, डिस्टरबेंस होगी। तो ये छोटी छोटी कुर्बानियां इंसान से भी बड़े बड़े काम करवा देती हैं। तो लिहाजा एक इंसान को हमेशा इस चीज़ की तड़प और तलब रखनी चाहिए कि अल्लाह मुझे चुने। और चुनाव में जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का चुनाव था, अगर आप उसको सामने रख के देख लीजिए, तो हजरत नूह को अल्लाह ताला ने कैसे चुना? अब ये एक बड़ा खूबसूरत सवाल है कि हजरत नूह का चुनाव कैसे हुआ। तो आप देखिए कि सबसे पहली बात है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मोजिजाना तौर पर तवील तरीन उम्र दी थी। 1000 साल इनकी उम्र थी। ये खरके आदत है, यानी आप कहें कि ये आउट ऑफ द रूटीन है। अल्लाह ने लंबी उम्रें दी, पहले लोगों की 100 100, 200 200, 300 300 भी थे, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 1000 साल की उम्र दी। ये एक तो मोजजा भी था और दूसरा अल्लाह ताला ये दिखाना चाहते थे कि जो दीन के काम करते हैं अल्लाह उनको सेहत भी दे देता है, उम्र भी लंबी कर देता है, वो बूढ़े भी नहीं होते। वजह क्या है कि हमने दीन के काम के साथ हमेशा बूढ़े लोगों का तसव्वुर किया होता है और हम सोचते हैं अच्छा कोई होगा 60 70 साल 80 साल का बूढ़ा जो हमें दीन की बात बताएगा। हालांकि ये नहीं पता, आप जवानी में दीन की इबादत शुरू कर दें। अगर आपका सफर ये जवानियों का शुरू हो गया, यकीन कीजिए कि आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। ये मैं आपको बिल्कुल पूरे शौर और सरे सदर से कहती हूँ। ये जो हमारा सबसे छोटा ग्रुप है ना, अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे। आप सब में से ये सबसे ज्यादा चुने जाएंगे इसी कोर्स में, आप देख लेंगे। शर्त एक ही आते रहे, और जो छोड़ने हैं ना वो 10 पारों से पहले छोड़ भी देंगे। ये भी आपको बता दूं, हर एक यहाँ अपने लिए दुआ करे कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अगर जमे रहे, अगर ये अपने ऊपर नफ्स पे काबू पाके जो कुर्बानियां दी, जो स्कूल छोड़े, कॉलेज छोड़े, जॉब छोड़ी, जमे रहे, आप ये पूरे सैकड़ों लोगों से ये ऊपर चले जाएंगे। ये मैं आपको आज यहाँ बैठ के प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। जवानी में जिसको अल्लाह चुन लेता है, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी। जवानी में तौबा करना नबियों का शेवा होता था। एक रिवायत में आता है कि जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 60 सजदों से बड़ा है। आप बूढ़े नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि आपका दिल जिंदा है। जब किसी पौधे को मुसलसल पानी मिलता रहता है तो वो फ्रेश रहता है, आप उसको पानी देना छोड़ते हैं तो मुरझाता है। तो जब जवानी में आपको इल्म का पानी मिला और ये मिलता जाएगा, आप कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। यकीन करें, मेरी आंखों में आंसू आ गए उस वक्त जब इस दफा मैं गई और हमारी तकमील थी सूरत अल बकरा की, नॉर्वे में भी थी। इतनी छोटी सी हमारी वो टीचर है, आप में से कई लोगों ने देखी हुई है वो सिस्टर, 2 3 साल पहले मेरे साथ आई थी। इरम ने देखी हुई है, रिजवाना ने देखी हुई है, सदफ ने देखी हुई है। हर जगह जहां दर्स होता है तो मैं पहले उसको मौका देती हूँ कि बेटा आप नॉर्वेजियन में बोलो, 15 मिनट उसके होते हैं, बाकी टाइम मेरा होता है। यकीन करें कि अल्लाह उसको नजर से बचाए, मैं उसको नजर भर के नहीं देखती। छोटी सी पुतली लगती है पढ़ाती हुई, और सब उसको कहते हैं हमारी छोटी उस्ताज है, और इतनी सी है, वो बच्ची है बिल्कुल। ऐसी अल्लाह ने उसको शक्ल सूरत और अपना रख रखाव भी दिया हुआ है माशाल्लाह। अब मुझे वो जब मिलती है और जब बात करती है ना, तो मुझे उसके अंदर वो चीज़ महसूस होती है जो उसके पढ़ने के दौरान नहीं होती थी। वो खुद कहती है कि मुझे ऐसे लगता है मैं पहली दफ़ा पढ़ रही हूँ। तो याद रखिए कि ये मांगिए कि अल्लाह हमें चुन ले। अल्लाह जैसे आदम को चुना, जैसे नूह को चुना, तो हमें भी चुन। ये कोई जिंदगी है? नफ्स के मारे हुए दर दर फिरने वाले धक्के खाने वाली कोई जिंदगी है? ये तो आमत उन्नास होते हैं, सिर्फ एनिमल इंस्टिंक्ट, सिर्फ सर्वाइवल के लिए जी रहे हैं। दो तरह का जीना है, एक है दुनिया के लिए जीना, ठीक है करते हैं सारे, लगे में रोटी कपड़ा मकान के पीछे, कैरियर जॉब पढ़ना, ये भी एक बात है। लेकिन उससे भी बढ़ के एक इंसान जब गुनाहों में पड़ जाए, शराब नशे का धुत हो जाए, गंदी नजरें, गंदी आंखें, गंदे कपड़े, ये कुछ जिंदगी है? बंदा अपने आप को शीशे में खड़ा होकर लान तान करे कि डूब मरो। लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, अल्लाह ने इंसान को इतना प्यारा बनाया, सुम्मा रदद्दना हु असफला साफिलीन, तुमने फिर अपने आप को इतने गंदे कामों में डाला। एक मौके पे एक आलिम थे, बुजुर्ग थे, तो उन्होंने किसी शराबी को देखा, शराब के नशे में धुत कूड़े के ढेर पे बैठा हुआ है, तो इसी किस्म की कोई बातें की कि ये तेरा नसीब है, तेरी माँ ने तुझे इसलिए पेट में रखा था कि तू गंदगी खा। तस्वीरें किसी ने एक दफा भेजी, यकीन करे कि शराब पी के लोगों को होश ही नहीं होती, नशे की आदत है, टॉयलेट के अंदर गिरा हुआ है, उसको होश नहीं है। तो याद रखिए, अल्लाह का चुनाव बहुत बड़ी बात है। जब लोग दुनिया के लिए चुने जाते हैं ना, तो लोग उनकी तस्वीरें खींचते हैं, फिर उनको इंटरव्यूज आते हैं, फिर उसको विक्ट्री स्टैंड पे टक टक टक। आज का सबक मुझे और आपको बताएगा कि अल्लाह जिनको चुनता है वो अपने घर का खादिम बना लेता है। पीछे अपने बाप बेटे की बात पढ़ी थी, इब्राहिम और इस्माइल की, कैसे अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मेरे घर को बनाओ और साफ करो। इसी तरह अल्लाह ताला ने यहाँ कुछ और चुनावों का जिक्र किया। कभी आप इन नबियों की जिंदगी के अंदर झांक के तो देखें। हजरत नूह 950 साल, ये दूसरा चुनाव, 1000 साल की उम्र, और फिर चुनाव क्या था कि 950 साल तक अल्लाह के दीन की तबलीग का मौका देना। लिख के देखिए, 950 ईयर्स एक बंदा लोगों को कहता है कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। आप कहते हैं अच्छा चलो ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत बड़ी तबलीगी जमात है, आज भी हम भी तबलीगी हैं, हम भी दर्स देते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन आप जरा रिजल्ट्स तो देखिए। 70 से 80 लोग इस 950 साल में दीन पे आए। एक रफ एस्टिमेशन कर लें आप हजरत नूह की जिंदगी का, हर 12 साल के बाद एक बंदा मुसलमान होता था, सिर्फ एक एवरेज। किसके अंदर इतना सब्र और हौसला है? क्या मेरे अंदर इतना सब्र है कि मैं पढ़ाने आऊं और कोई आए ही ना, मैं लोगों को दीन की दावत दूं कोई सुने ही ना, 1 साल 2 साल 3 12 साल के बाद कोई एक बंदा के चले लगता है कि आपकी बात ठीक है। लेकिन देखिए आज अल्लाह इनके नाम कैसे चुन रहा है। हमारी नजर सिर्फ क्वांटिटी पे होती है, कितने लोग आते हैं, अब कितने हो गए, क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए। याद रखिए अल्लाह की नजर फिगर्स एंड फैक्ट्स पे नहीं है, कोशिशों पे। अल्लाह कहते हैं हमने चुना नूह को, जो थोड़े लोग, लेकिन फिर अगला चुनाव क्या था कि इतने थोड़े लोगों के बावजूद कान अब्दन शकूरा, कुरान में आता है नूह कौन था, अब्दुल शकूर था। और आपको पता है कि हजरत नूह का अपना नाम क्या था? नूह नाम नहीं था उनका, नूह तो उनका लकब था। अल्लाह की याद और अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे कि जिसको आप कहें कि नोहा करना, उससे इनको नूह कहा गया कि बहुत रोने वाला शख्स, असल में इनका नाम अब्दुल शकूर था। ये शुक्र करने वाला बंदा था। हम कहते हैं फायदे नहीं, टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे, अब देने ही नहीं, पहले ज्यादा आते थे अब कम आ रहे हैं, करना ही नहीं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए टेस्ट, अगर आप आधे आधे नंबर के ऊपर हिम्मत छोड़ के टेस्ट देना छोड़ देंगे तो। याद रखिए ये सब चीजें मकसद नहीं है, मकसद का रास्ता है। फिर आप देखिए कि इनका चुनाव और क्या हुआ, सारी दुनिया में तूफान आ गया लेकिन अल्लाह ने नूह को बचा लिया। सूरह हूद में हम इनकी स्टोरी तरतीब से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसे लगता है एक बुढ़ा शख्स बैठा कश्ती बना रहा है, कील ठोक रहा है और पास से लोग गुजर के मजाक उड़ा रहे हैं, ये कश्ती कहाँ चलानी है जनाब, उनको नहीं पता था एक तूफान आ रहा है। किस तरह अल्लाह ताला ने इनको चुना, अपना सगा बेटा तक उसमें डूब रहा है और अल्लाह ने इनके साथ वो 60 70 बचा लिए। गोया कि अल्लाह का ये फैसला था कि ईमान और तवक्कुल पे जो कश्तियां चाहे कमजोरी क्यों ना हो, कोई असबाब नहीं, अल्लाह उन कश्तियों को इंशाल्लाह बचा लेगा। लेकिन बहुत बड़े बड़े भरोसे रखने वाले डूब जाएंगे। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हजरत नूह का जिक्र खैर कर दिया। इनको आदम सानी कहते हैं, सेकेंड एडम। पहले जैसे आदम के जरिए से दुनिया बनी थी ना, इसी तरह इस तूफान नूह में सारी दुनिया में पानी आ गया था। 6 महीने तक पूरी दुनिया में बारिश थी, जमीन भी पानी उगल रही थी और आसमान से भी पानी आ रहा था। आखिर अल्लाह ने कहा क़लई माँ की, पानी रोक दे जमीन और आसमान तो थम जा, तो फिर पानी रुका। फिर नूह की कश्ती जो जूदी पहाड़ पे टिकी और लोग आए, थोड़े से लोग बचे। तो अल्लाह ने आज जितने दुनिया में हम सब, आपको बताया नूह की नस्ल से, जहां आएगा जिक्र आपको लिखाऊंगी कि किस इलाके के लोग, इनके 3 बेटे थे इनकी नस्ल से जिनसे ये पूरी दुनिया चल रही है। तो अल्लाह ताला जब चुनता है तो फिर कैसे चुनता है। चलिए अगले चुने हुए किरदार को भी देख लेते हैं, और वो कौन थे कि अल्लाह ताला ने चुना आले इब्राहिम को। देखिए जरा ऊपर गौर कीजिएगा कि जब बात हुई चुनने की, आदम अकेले, नूह अकेले, लेकिन जहां बात हो रही इब्राहिम की, आला इब्राहिम। इब्राहिम के तो क्या कहने, उनका तो पूरे का पूरा घर चुना हुआ था। ये है वो जिसको आप कह सकते हैं होम स्वीट होम, कि जिस घर का एक एक बच्चा अल्लाह के रस्ते के कामों में लग जाए। देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले चले थे। आप इनकी हिस्ट्रियाँ पढ़े ना तो रोना आ जाएगा आपको। ये हमारी सारी महरूमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हाय बाप नहीं तो माँ नहीं तो फलां नहीं तो भाई नहीं तो बहन नहीं तो दौलत नहीं। आप कभी नबियों की ज़िंदगी पढ़े आपको लगेगा दुनिया के सबसे ज़्यादा काबिले रहम लोग थे। कोई इनके बड़े बड़े घर नहीं थे, कोई इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी और लैंड क्रूजर्स नहीं थे और इनके नाम पे बड़े बड़े बैंक अकाउंट्स नहीं थे। लेकिन अल्लाह कितने प्यार से कहता चुनता, अकेले निकले थे घर से। सबसे पहले तो अल्लाह ने इनको चुना कि एक काफिर माहौल में पैदा किए गए, लेकिन इन्होंने अपनी फितरत को सलामत रखा। सूरत अल-अनाम में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह किस तरह इन्होंने मुशाहिदा हक किया था। कभी सूरज को देख के कहते हैं ये रब होगा, कभी चांद को देखते हैं, कभी सितारों को। यानी ऐसे लगता है कि एथियस्ट माहौल था उनका, कि लोग अल्लाह तक नहीं पहुंचते, सिर्फ क्रिएशन में खोए हुए हैं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं इन सब के रब को मानता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। आज हम कहते हैं क्या करें ना, फिर हम वेस्ट में जो रहते हैं। नहीं प्लीज़, आप नहीं समझ सकती, हम यहाँ रहते हैं तो हमें ये तो करना पड़ेगा, ये तो पहनना पड़ेगा, ये तो जाना पड़ेगा। आज कितने हम कॉम्प्रोमाइजिंग हो गए। आज हम इस मुल्क से निकलकर दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हमारे ड्रेस क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि हमारे मुल्कों में अभी भी वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है जो कि हम यहाँ अपने बच्चों के नाम पे एक्सेप्ट कर चुके हैं। आप अपने ऊपर लेके सोचें, नबी सल्लम का अगर तसव्वुर करके देख ले, जहाँ मैं, मेरे हालात, मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, जिस तरह मैं हूँ, अगर अल्लाह के नबी मेरी ज़िंदगी में आ जाएं और मुझे देखें तो क्या मैं कंफर्टेबल फील करूँगी? हम तो इतनी जल्दी रंग बदलते हैं। इब्राहिम ने अपना रंग नहीं बदला, ये पहला चुनाव था। और ये सारे उन सवालों का जवाब है जो लोग कहते हैं, अच्छा जो बच्चे काफिरों के घरों में पैदा होते हैं उनका क्या होगा? इब्राहिम का क्या हुआ? किसने उसको रास्ता दिखाया? अल्लाह ने दिखाया। फिर दूसरा इनका चुनाव क्या था कि इनको बड़ी छोटी उम्र में अल्लाह के रास्ते में हिजरत का मौका मिल गया। आपको पता है कि हजरत इब्राहिम की ज़िंदगी में बहुत सारी हिजरतें थी। कभी अकेले जा रहे हैं, फिर बीवी के साथ हिजरत की, फिर बेटे के साथ की, फिर बेटे और बीवी को छोड़ा। तो अल्लाह ने इनको अपने दीन के लिए फिराया, इधर से उधर, उधर से इधर। फिर आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चुनाव क्या हुआ कि अल्लाह सुबहाना ताला ने इनको बुढ़ापे में औलाद दी। जब औलाद अमूमन नहीं होती, पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह हम किस्सा इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम। फिर इस तरह अल्लाह ने इनको कैसे चुना कि अल्लाह सुबहाना ताला ने इनको, इनकी बीवी और बच्चे को अल्लाह का घर बसाने के लिए दूर करने का हुक्म दिया, इन्होंने मान लिया। आप कहेंगे ये कुछ चुनाव है, जुदाइयाँ, ये क्या दीन है, ये क्या ज़िंदगी है, घरों के नक्शे ख़राब हो गए, मियाँ साहब आते हैं बेगम नहीं, बेगम आती हैं मियाँ साहब नहीं, ये दीन बड़ा ख़राब है। नहीं, इनको भी गर्म रोटी चाहिए थी, लेकिन बूढ़ी बीवी बच्चे को छोड़ दिया वहाँ पर। हैं, फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनकी आल को कैसे चुना। इनके मासूम बच्चे की एड़ियों से पानी का एक ऐसा चश्मा नमूदार हुआ जो क़यामत तक कायम रहेगा इंशाल्लाह। जम जम, ये इस्माइल की एड़ियों की निशानी थी। अल्लाह उस बच्चे के नक्शे कदम को महफूज कर लेता है पानी की सूरत में, जैसे बाप के नक्शे कदम को मुकाम इब्राहिम की सूरत में चुनता है। अल्लाह ने इनकी बीवी को चुना कि वो एक ऐसी उम्मत का जरिया बनी कि जहाँ बिल्कुल कुछ नहीं था, वहाँ अल्लाह ने बीबी हाजरा के बेटे से एक ऐसी कौम आबाद करा दी। कल के सबक में हमने पढ़ा ना, तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यि और तुखरिजुल मय्यि मिनल हय्य। तो इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं, कहते हैं कि ये असल में एक उम्मत का हया था। मुर्दा उम्मतों में अल्लाह एक ऐसी उम्मत खड़ी कर देता है कि जहाँ अल्लाह का दीन कायम होता है, और कई जिंदा उम्मतें होती हैं और उनको ज़ाया कर दिया जाता है, जैसे यहूद है। और इस्माइल कहाँ थे? एक वीरान जगह पे भेज दिए गए और अल्लाह ने उनको चुनवा लिया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल और उनके घराने का चुनाव क्या था कि अल्लाह ने कहा कि बाप बेटा मेरा घर बनाओ, पहले पारे का आखिर पढ़ चुके हम, ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं। कहा कि चलो आओ मेरा घर बनाओ। और वो देखो वो वक्त जब इब्राहिम इस्माइल के साथ मिल के मेरे घर की दीवारें कर रहे थे, वह जरफ़ इब्राहिम वल इस्माइल घर की बुनियादें बना रहे थे। फिर इसी तरह आप देखिए कि आले इब्राहिम का चुनाव कैसे हुआ कि अल्लाह ने इनसे अम्बिया का सिलसिला जारी कर दिया। जितने नबी आज हमें मालूम है सब के सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, सिवाय उन तीन चार अम्बिया कराम के जो इनसे पहले थे, हज़रत इदरीस, हज़रत इलियास, जो शुरू के दिनों के नबी थे। हज़रत इब्राहिम के बाद जितने नॉन प्रॉफिट्स हैं सब इब्राहिम की नस्ल से हैं। पीछे आपको नसबनामा दिखा चुके हैं। حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب ان میں سے کتنے پیغمبر آئے. آپ بتائیے کیا ہم جنا جانا چاہتے ہیں اس طرح؟ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ خیر کے چشمے جاری کرائے کہ جس کا پانی آج بھی انسانیت پی رہی ہے. کبھی سوچا کریں کہ اگر نبی نہ ہوتے، یہ میں نے ایک سال میں تلک رسول کا پورا پارا رسالت کے ٹاپک پہ کروایا تھا، تو اس میں ہم نے اتنی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ کبھی آپ نے رسولوں کا احسان سمجھا؟ آج ہم استادوں کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بہت کچھ ہمیں بتا رہے ہیں، بہت ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، علماء کرام کے گن گاتے ہیں، اچھے سپیکرز کے گن گاتے ہیں. کبھی آپ پیچھے جا کے دیکھیے کہ اگر نبی نہ ہوتے تو اللہ کا فرشتہ ہمارے اوپر تو آنا نہیں تھا. تو ان نبیوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستوں میں لگا دی. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. چونکہ آل کا لفظ جہاں بھی آ رہا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے، تو ابھی سے ایک چھوٹی سی ٹپ لے لیجئے. بلکہ میں اکثر ایک جملہ بولتی ہوں، کچھ لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا، کہ دین کا سفر تنہا نہیں چلتا. چلتے ہیں نا تو بچوں کو ساتھ لے کر چلیں، شوہر کو اپنا ہم خیال بنائیں. اتنے مؤدب، اتنے ایٹیکیٹڈ اور گڈ لکنگ آپ بن جائیں کہ آپ کے شوہر خود بخود آپ کے اس سفر میں شامل ہو جائیں. روب نہیں ڈال سکتے آپ، غصہ نہیں کر سکتے، حکم نہیں دیں گے، کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات. پہلے آپ ان کی اچھی باتیں مانیں، پہلے ان کو دکھائیں کہ میرا دین کتنا خوبصورت ہے جو مجھے کتنی اچھی بیوی بننا سکھاتا ہے. اچھی ماں بنیں، اپنے گھر کو صاف کریں، کھانے کو اچھا کریں، اپنے گھر کے اندر کے کپڑوں کو خوبصورت کریں باہر کی نسبت. پھر دیکھیں آپ کے شوہر کس طرح آپ کی باتیں مانتے ہیں. اور نہ کوئی مانے، آپ کے لیے اللہ راستے بنا دے گا. جتنا ہم باہر کی زندگی کے لیے کیوریس ہے نا، ایک مسلمان عورت اتنا گھر کے اندر ہوتی ہے. پھر بچے، آپ دیکھیے کہ میں نے کہیں کوٹیشن پڑھی، مجھے اتنی اچھی لگی کہ مجھے بھولی نہیں، شاید ایک ہی دفعہ پڑھی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر تم دور جانا چاہتے ہو، دو چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ لکھ کے دیکھ لیں، جس کو واک کی عادت ہے وہ لکھ کے، بلکہ پہلے سوچ لیں. آپ جب واک کرتے ہیں نا تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا ایک گول کیا ہے کہ آپ دور جانا چاہتے ہیں، لمبی واک، اور دوسرا کیا ہے کہ آپ اپنی واک کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، فروٹ فل. تو وہ بات کچھ اس قسم سے تھی کہ اگر تم دور جانا چاہتے ہو نا تو اکیلے نکل جاؤ، اور اگر تم اپنی واک کو انجوائے کرنا چاہتے اور تھکنا نہیں چاہتے تو لوگوں کو ساتھ لے کر چلو. بات کچھ بھی ہو، یہ بات حقیقت ہے. جو گھر دیکھیے، ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے. میں نے باہر سے اٹھا کر ایک چیز مائکرو ویو میں رکھی، میں نے 30 سیکنڈ لگائے، گرم ہو گئی. میں نے اسی گمان کے مطابق فریج میں سے بھی وہی چیز نکال کے اوون میں رکھ دی، 30 سیکنڈ میں کچھ نہیں گرم ہوئی. فرق کس چیز کا ہے؟ کہ یہ دیکھو کہ پہلے کیا ٹیمپریچر تھا. بالکل اسی طرح ہمارے خاندان، ہمارے گھر، ہمارے دوست، ہمارے لائف سیٹ اپ، یہ ڈفرنٹ ٹیمپریچر پہ ہوتے ہیں. کچھ گھرانے پہلے ہی الحمدللہ، یہ تو نہیں ہے کہ ہم کو بے دین لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، خدا فراموش تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ کے حکم سے، لیکن کچھ لوگ زیادہ دور جا چکے ہوتے ہیں. اگر آپ کو اپنے گھر والے، اپنی بیویاں، اپنے شوہر، اپنے بچوں میں کوئی بہت دور دکھتا ہے، تو پہلے برنگ اٹ ہم ٹو روم ٹیمپریچر، کلوز کر کے لائیے. پہلے اس کے عقیدے کی بات اس کو نماز پہ لگائے، پھر اس کی دوسری چیزوں پہ کریں، لیکن کوشش کریں کہ ہم نے اس سفر میں ساتھ چلنا. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ اللہ ہمارے بیوی اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ آپ وہاں جا کے جملہ سنیں گے، زندگی رہنی یا نہیں رہنی، ابھی سن لیں. اکثر دعا تو سب کو یاد ہے نا. آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتے ہیں شوہر اور بچے اور بیوی؟ کہ جب وہ اتنی نیکیاں کریں کہ ان کو نیکی کرتا دیکھ کے ہماری آنکھیں بھیگ جائیں، ہمیں رونا آ جائے اپنے بچوں کی نیکیاں دیکھ کے. یہ دعا دیا کریں اپنے بچوں کو، اور آج آپ ان کے لیے سحریوں میں روئیں. مستغفرین بالاسحار، پیچھے ہی پڑھا ہے 2 سبق پہلے. تو آج اگر ہم تڑپیں گے نا اپنی نسلوں کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ ضرور خیر لائے گا.
ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم